కసాయ పాహుడ మణేయణయముజ్జలం అనంతతం గాహాహి వివరియం తం గుణహర భడారయం వందే.
యహ శ్రీ వీరసేన ఆచార్య రచిత జయదేవలా టీకా హై జో కషాయ పాహుడ తథా చోనీ సూత్ర గ్రంథం పర్ లిఖీ హుయీ హై జిన్కే కర్తా హై గుండర్ భట్టారక్ తథా యతి ఉషభ ఆచార్య జిన్హోనే భగవాన్ మహావీర్ కే उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है. दूसरी पुस्तक द्वितीय अर्थादिका जो प्रकृति विभक्ति, उसमें अभी हम उत्तर प्रकृति विभक्ति में पृष्ठ 111 पर आ गए हैं. 111 यहाँ कालानुगम चल रहा है. उत्तर प्रकृति में काल की बात चल रही है. स्वामित्व हमने देखा और अभी काल देख रहे हैं और उसमें भी मार्गणा की बात चल रही है.
अपना साधन उत्सव समय कृष्ण जी जो अनंतराम मंदिर का विसर्जन करके साधन थोड़ा सा एक समय की जो बात आई थी 109 उसको अपन ये वासना काल के अंदर दे सकते हैं. ये बात नहीं है अनंतराम मंदिर में दूसरे पुनस्थान का उदय कैसा है.
हाँ.
दूसरे पुनस्थान में अनंतराम मंदिर का
उदय कैसा है. हाँ.
उसकी भी संयोजना करती है.
हाँ. उपशम समय दृष्टि की है परंतु विसंयोजना करके जो जिसने विसंयोजना की है
उसका वासना काल भी उसका थोड़ा टाइम के लिए तो होगा ही. उसकी उदय नहीं होते हुए भी.
हाँ. अभी ऐसा कहीं लिखा हुआ हो कोई हम उसका अगर एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण कहीं आता है तो. हाँ.
ये जो बात यहाँ 109 देखी ना वो एक पॉसिबिलिटी है. ऐसे वासना काल दरम्यान अगर उदय आया तो उदय नहीं होते हुए भी उसकी वासना काल तो रहता ही है अनंतराम.
कुछ तो एक्सप्लेनेशन होगा परंतु वो क्या है वो हम नहीं कह सकते. तो कहीं शास्त्र में अगर हमें पता चले उसके कि विसंयोजना करते हुए भी कैसे दूसरे में आया उसका अगर कोई हमें ठोस आधार मिलता है आगम का तो ही. क्योंकि हम अपने कल्पना से तो कुछ नहीं कह सकते करनानियों के बारे में. अब यहाँ जो काल की बात चल रही है वो मार्गणाओं में काल बता रहे. जब काल की बात होती है तो एक जीव की अपेक्षा बात है और जब गतियों में काल बताएंगे किसका उत्तर प्रकृतियों का. तो जैसे नरक गति में उत्तर प्रकृतियों का काल हम देखेंगे तो जितनी नरकायु है अन्य गति से नरक गति में आना चाहिए और फिर नरक गति से अन्यत्र चला जाए तो कितने प्रकृतियों का जो काल है जितनी नरकायु है उतना ही उसका काल घटित होता है. और जहां अन्य पॉसिबिलिटी है जैसे समय मिथ्यात्व समय प्रकृति आदि पहले उद्वेलना करके आया है और फिर एक समय में उद्वेलना पूरी होती है तब तो एक समय काल घटित होता है. अनंतानुबंधी के बारे में भी उसका काल कैसे घटित किया कि विषय योजना की थी और फिर मिथ्यात्व में आ गया इस तरह से उसकी भी हमने देखी थी बात. अब यहाँ विशेषार्थ बता रहे हैं. हमने गति में देखा इंद्रियों में देखा काय में देखा अब उसी का यहाँ विशेषार्थ चल रहा है. 111 पृष्ठ. एक जीव वनस्पति काय में कम से कम खुदा भोग ग्रहण काल तक एक ही लभ्य पर्याप्त का भोग कर सकता है वो तो उसका जघन्य काल होगा और अधिक से अधिक असंख्यात पुद्गल परिवर्तन काल तक रहता है. वनस्पति काय कहा अकेला निगोद नहीं कहा. इतर निगोद में रहने का काल ढाई पुद्गल परावर्तन है और अन्य यानी वो बादर में चला जाएगा. बादर में भी प्रत्येक में चला जाएगा तो प्रत्येक और साधारण ऐसा ये काल ले लिया. इसलिए 26 प्रकृतियों का जघन्य काल खुदा भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण कहा है. परंतु सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना की अपेक्षा। उनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्लवम के असंख्यात भाग ही प्राप्त होता है। किसका? सम्यक प्रकृति का जघन्य काल, सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल उद्वेलना करके आया है और इसमें उत्पन्न हुआ है। एक समय में उद्वेलना पूरी होती है तो सम्यक प्रकृति का काल एक समय घटित होता है। और अधिक से अधिक कितना है? तभी मिथ्यात्व में गया है और अभी नया नया इसमें आया है सादी मिथ्या दृष्टि। तो पल्ले के असंख्यात पे भाग काल तक उन दो प्रकृतियों की सत्ता रहेगी, उससे अधिक नहीं रहेगी, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ इससे अधिक काल तक इन प्रकृतियों का सत्व नहीं रहता। इन्हें लगातार मिथ्यात्व में रहे तो ये प्रकृति कितने काल तक रह सकती है? तो पल्ल के असंख्यात भाग काल तक ही। बीच में सम्यक तो प्राप्त करता रहे बीच बीच में तो वो तो अधिक काल तक चलता रहेगा उसका। ऊपर कहे गए शेष, परंतु यहाँ तो वनस्पति कायिक की बात चल रही है। क्या कह
रहे
हैं? एक की नहीं है, काय मार्गणा चल रही। तो यहाँ तो बात जनरल जब हम कहेंगे तो जब हमने देखा था कि कोई अन्य जनरल की बात करेंगे तो उद्वेलना होने के पहले पहले फिर समय तो प्राप्त करें तो उसकी सत्ता चलेगी, परंतु यहाँ तो वनस्पति काय के रहते हुए ये हो नहीं सकता है, क्योंकि वहां तो कोई समय तो प्राप्त करने का उपाय है ही नहीं है एक इंद्रियों में। तो इस तरह से हमें सोचना है उसका। तो पल्ले के असंख्यात भाग काल तक ही उसका उत्कृष्ट काल होगा। पंचेंद्रियों में जब हमने घटित किया था तो कितना काल घटित किया था? सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का लगातार काल कितना घटित किया था याद है? काल कितना है टोटल? मैं काल पूछ रही हूँ। तीन बार पल्ले के असंख्यात भाग प्लस 66 दो बार 132 सागर, इतना वो, क्योंकि बीच में वो उद्वेलना पूरी होने के पहले पहले समय प्राप्त करता है, फिर वहां वेदक समृद्धि के साथ 66 सागर रहता है, फिर दोबारा मिथ्यात्व में आता है, फिर पल्ले के असंख्यात भाग काल बीता। इस तरह वहां पंचेंद्रियों में देखा, यहाँ वनस्पति काय में उद्वेलना पूरी हुई तो वहां तक ही उसका काल गिना। टोटल एक इंद्रियों में रहने का काल भी पल्ले के असंख्यात, सॉरी यहाँ जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण देखा था, अकेले वनस्पति में भी यही यहाँ जो कुछ बात बताई है तो ये असंख्यात का थोड़ा इसमें फर्क पड़ेगा। वे भी असंख्यात ही कहला गए, ये भी असंख्यात ही कहला। पूरा एक इंद्रियों में रहने का काल बड़ा होगा। ऊपर कहे गए शेष बादर वनस्पति कायिक आदि के सभी प्रकृतियों का काल बादर एकेंद्रिय आदि के समान जान लेना चाहिए। बादर एकेंद्रिय में हमने काल देखा कितना है, पर्याप्त पर्याप्त मिलके कितना होता है? अंगुल का संख्या था। और सूक्ष्म में हमने देखा था वो तो असंख्यात लोग देखे। अब निगोद की बात चल रही, निगोद यानी साधारण की बात है। जब निगोद कहते तो उसमें सूक्ष्म निगोद भी है, बादर निगोद भी है, पर्याप्त भी है, अपर्याप्त भी है। निगोद जीवों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय, वहां भी ऐसे ही सोचना कि वो पहले उद्वेलना करके आया है और एक समय बाकी है। और उत्कृष्ट काल पल्लवोपम का असंख्यात भाग है, भले निगोद में कितने ही काल रहे परंतु सम्यक प्रकृति तो पल्ले के असंख्यात भाग काल में तो उसकी उद्वेलना हो जाएगी। शेष प्रकृतियों का जघन्य काल खुद्दाभव ग्रहण प्रमाण, निगोद का जो जघन्य आयु है, और उत्कृष्ट काल अढ़ाई पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अकेले निगोद में इतर निगोद की बात चल रही है, क्योंकि सादी शांत काल गिनाया जाता है, नित्य निगोद तो अनादि से अभी तक है, अभी उसमें से कितने जीव बाहर जाएंगे उसकी अपेक्षा यहाँ नहीं लेनी है। अन्य मार्गणा में से उसमें आया हुआ जीव लेना है, विवक्षित मार्गणा में आया हुआ जीव। अब निगोद की जनरल बात अढ़ाई पुद्गल परिवर्तन बताएं। अब बादल निगोद जीवों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्लवपम का असंख्यात्व भाग है तथा शेष 26 प्रकृतियों का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण ये वहां की कम से कम स्थिति उसकी आयु और उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण है। ये बादल निगोद की बात चल रही है, कर्म स्थिति प्रमाण उसका काल। बादर निगोद पर्याप्त जीवों के सभी प्रकृतियों का काल बादर एकेंद्रीय पर्याप्तकों के समान है और बादर निगोद अपर्याप्त जीवों के सभी प्रकृतियों का काल बादर एकेंद्रीय अपर्याप्त जीवों के समान है। अपर्याप्तों का लगातार काल अंतर्मूर्त होता है तथा सूक्ष्म निगोद जीवों के सभी प्रकृतियों का काल सूक्ष्म पृथ्वीकायी जीवों के समान है। सूक्ष्म जीवों में भी हमने देखा था, सूक्ष्म में अगर हम देखेंगे तो असंख्यात लोक काल होता है, उसके पर्याप्त पर्याप्त भेद करेंगे तो दोनों का अपना अपना अंतर्मुख होता है। विशेषार्थ निगोद जीवों का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल ढाई कुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, अतः इनके 26 प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल भी उतना ही है। जब 26 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल कहेंगे तो ये अनादि मिथ्या दृष्टि होगा कि सादी होगा, सादी होगा तो सादी तो अढ़ाई आधे पुद्गल परिवर्तन में पहुंच जाने चाहिए। हाँ क्यों लक्ष्मी जी, प्रश्न नहीं समझ देखो यहाँ क्या कहा, 26 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल कितना है, ढाई पुद्गल परिवर्तन, तो ये 26 प्रकृति वाला कौन हो सकता है, अनादि। उसकी बात कहाँ चल रही है, मेरा प्रश्न क्या है, ये जो अढ़ाई पुद्गल परिवर्तन 26 प्रकृतियों का काल बताया है वो अनादि ही होना चाहिए, ये लगाना क्यों, सादी होगा तो आधे पुद्गल परिवर्तन में तो वो मोक्ष जाना चाहिए, या अढ़ाई पुद्गल परिवर्तन बताया है तो 26 प्रकृतियों के सत्व वाला अनादि जो वाला है उसकी बात है। तथा सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्लवपम के असंख्यात विभाग उद्वेलना की अपेक्षा कहा है, जिसका स्पष्टीकरण ऊपर कर आए हैं। ये तो हमने बहुत बार देखा, बादर निगोद जीवों के सभी प्रकृतियों का काल यहाँ पर अलग से बताया है, पर बादर पृथ्वी कायिक के काल से उसमें कोई विशेषता नहीं है, अतः बादर पृथ्वी कायिक के काल का जिस प्रकार पहले खुलासा कराए हैं उसी प्रकार यहाँ समझ लेना चाहिए। ये निकालना बादर पृथ्वी कायिक, क्योंकि हमने कायिकों की वेद देखी है विवक्षित काल का, कर्म स्थिति प्रमाण बताया है 110 पृष्ठ में, विशेषार्थ में देखो या ऊपर भी लिखा है, नीचे से विशेषार्थ में 3, 3, 6, 2, 8 नीचे से 9वीं लाइन में कि 26 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल जो कर्म स्थिति प्रमाण बताया है, यानी वो मोनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति समझना। 109 पर भी मूल मैटर में भी लिखा है उन्होंने 109 पेज पर, पृथ्वी काय आदि में है ना, वहां पर नीचे के पैराग्राफ में ये नीचे से चौथी लाइन उत्कृष्ट काल, नीचे से तीसरी लाइन में उत्कृष्ट काल कर्म स्थिति प्रमाण बताया। यह हर एक काय की अलग अलग बात है, जब बादर सभी की बात करेंगे, बादर एकेंद्रीय मादर एक इंद्रिय कहते तो अंगुल का असंख्या तो अभाव होता है। एक एक काय में कितना है? तो ये कर्म स्थिति प्रमाण, पृथ्वी काय में, अग्नि काय में, अलग अलग। अब आते हैं अपने मूल पेश पर, पुष्प पर। इसी प्रकार बादर निवोद पर्याप्त आदि के सभी प्रकृतियों का काल बादर एकेंद्रिय पर्याप्त आदि के समान जान लेना चाहिए। तो बादर एकेंद्रिय पर्याप्तों में हमने अलग अलग कायों में संख्या हजार वर्ष देखा था। अब हम आते हैं यहाँ पर 112 नंबर में नीचे का पैरेग्राफ, त्रस काय में। पांच स्थावर कायों की बात देखिए, हमने चार काय को एक कथा लिया, फिर वनस्पति काय को अलग बताया। वनस्पति काय को अलग बताने का कारण है वो निगोद में वो असंख्यात फुटगल परिवर्तन प्रमाण काल बताता है, वो बताने के लिए उसको अलग से बताया। अब त्रस काय की बात चलेगी, काय मार्गणा चल रही ना अपनी। त्रस कायिक जीवों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय, ये तो उद्वेलना करते करते एक समय बचा था, और उत्कृष्ट काल। अब ये त्रस काय है, वनस्पति काय में तो बीच में सम्यक तो प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं था, अब त्रसों में तो सम्यक तो प्राप्त हो सकता है। इसलिए पल्लवों के तीन असंख्यात भागों से अधिक, यानी पल्लवों का असंख्यात भाग तीन बार लेना है। 132 सागर है, हमने ये एक इंद्रिय मार्गणा में पंचेंद्रियों में भी ये बात देखी थी, यहाँ त्रस में घटा रहे हैं। तथा शेष 26 प्रकृतियों का जघन्य काल खुद्दा भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्त्व से अधिक 2000 सागर है। ये त्रस में रहने का उत्कृष्ट काल। इसी प्रकार त्रस का एक पर्याप्त जीवों के भी कहना चाहिए, वहां पर्याप्त अपर्याप्त की बात होती है। तो उत्कृष्ट काल है पृथक्व कोटि, यानी पूर्व कोटि पृथक्व से अधिक 2000 सागर, और अकेले त्रस पर्याप्त कहेंगे तो 2000 सागर। इतनी विशेषता है कि इनके 26 प्रकृतियों का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि पर्याप्तों में जघन्य आयु अंतर्मूर्त है और अपर्याप्तों में खुद्दा भोग ग्रहण, और उत्कृष्ट काल 2000 सागर। त्रस का एक लब्धि अपर्याप्त जीवों के सभी प्रकृतियों का काल पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तकों के समान है। इसमें भी हम सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का काल जघन्य एक समय, और उत्कृष्ट कितना होगा अंतर्मूल, क्योंकि इनका ही उत्कृष्ट काल अंतर्मूल है। अन्य प्रकृतियों के बारे में जघन्य काल कितना होगा 26 प्रकृतियों के बारे में? खुद्दा भोग, खुद्दा भोग एक भोग लेना, और अधिक से अधिक काल अंतर्मूल, क्योंकि कितने भी भोग करेंगे तो लगातार वो अंतर्मूल ही होंगे। विशेषार्थ त्रस का एक जीवों का जघन्य काल खुद्दा भोग ग्रहण प्रमाण, और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि पृथक्व अधिक 2000 सागर है। अतः इनके 26 प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल भी उतना ही है, तथा सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय उद्वेलना की अपेक्षा है, और उत्कृष्ट काल पल्लोपम के तीन असंख्यात भागों से अधिक 132 सागर। उद्वेलना के काल के भीतर पुनः पुनः सम्यक्तों को सम्यक्त्व की प्राप्ति की अपेक्षा है, जिसका खुलासा पहले कराया। पर्याप्त त्रस कायिक का चाहिए, क रह गया कायिक। पर्याप्त त्रस कायिक का जघन्य काल अंतर्मूर्त, क्योंकि पर्याप्तों की जघन्य आयु अंतर्मूर्त होती है, और उत्कृष्ट काल 2000 सागर है। इसलिए इनके 26 प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल भी उतना ही है, शेष कथन सुगम है। अब ये तो काय मार्गणा हो गई, अब योग मार्गणा। योग मार्गणा के अनुवाद से पांचों मन योगी, पांचों वचन योगी, वैक्रियक काय योगी और वैक्रियक मिश्र काय योगी जीवों के 28 प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये कैसा होगा? योगों के पलटने के कारण। और ऐसा भी होता, इतनी विशेषता है कि वैक्रिक मिश्र का योगी जीवों के 26 प्रकृतियों का जघन्य काल अंतर्मूर्त है, क्योंकि वैक्रिक मिश्र अवस्था ही अंतर्मूर्त की है। सामान्य का योगी जीवों के समय प्रकृति और समय मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यपुम का असंख्यात भाग है तथा शेष शिवरात्र 26 प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनंत काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है, क्योंकि काय योग के लिए सामान्य काय योग यानी उसमें कार्मण काय योग, अवतारिक मिश्र है, अवतारिक काय योग है, एक इंद्रियों की अपेक्षा ली है उसमें, तो उसमें वो इतना काल वो हो सकता है, क्योंकि उनके तो काय योग के अलावा अन्य योग होते ही नहीं। यहाँ सामान्य काय योगी जीवों में 26 प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय कैसे प्राप्त होता है? समाधान, उक्त 26 प्रकृतियों के क्षय होने के अंतिम समय में काय योग से परिणत होने पर 26 प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय प्राप्त हो जाता है। औदारिक काय योगी जीवों के मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व, 16 कषाय और 9 कषाय का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है। औदारिक काय योग लिया ना अभी, पहले तो सामान्य काय योग लिया था, अब औदारिक काय योग बना रहे, बीच में औदारिक मिश्र न हो तो ये पर्याप्ति के बाद पूरी जितनी आयु रही है उतनी लेनी चाहिए, एक ही भव ले सकते हैं, 2-4 भव इकट्ठा ले लिए वो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में औदारिक मिश्र होगा तो इसलिए वहां संख्यात 1,000 वर्ष लिए, 22,000 वर्ष लिए, 22,000 वर्ष। ये किसकी आयु है? पृथ्वी का एक पर्याप्त, बादर पर्याप्त पृथ्वी का एक है। औदारिक मिश्र का योगी जीवों के 28 प्रकृतियों का जघन्य काल 3 समय कम खुदा भव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। इतनी विशेषता है कि इनके सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय है। ये तो जघन्य काल हमने बहुत बार घटित करके देखा है। ये जघन्य काल औदारिक मिश्र के लिए कितना लिया? 3 समय कम खुदा भवग्रह। ये 3 समय कहाँ से लिए? विविग्रह गति में कारमाण काय योग में 3 समय बीत गए, तो आयु के 3 समय कारमाण काय योग में गए, बाद में औदारिक मिश्र काय योग शुरू हुआ, तो औदारिक मिश्र के बाद कौन सा योग होगा? औदारिक मिश्र ही रखना है ना हमको, लब्धिया पर्याप्त लेना है, तो औदारिक मिश्र अवस्था में ही मरेगा वो, इसलिए खुदा भव ग्रहण लिया और उसमें से 3 समय कारमण काय योग के घटा दिए और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये अंतर्मूर्त कैसे होगा? लगातार अपर्याप्त अवस्थाएं प्राप्त होगी, तो बीच में कारमण काय योग नहीं लेना, तो लगातार कितने भव हो सकते हैं अपर्याप्त के, तो अंतर्मूर्त में ही जितने भी होंगे एक अंतर्मूर्त तक ही होंगे, उससे अधिक नहीं। इतनी विशेषता है कि इनके सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय है। अब आहार का युग 114 पृष्ठ चल रहा है अपना, काय मार्गणा योग मार्गणा चल रही है। आहार का योगी जीवों के 28 प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। क्योंकि आहारक का योगी अंतर्मूर्त तक करें, आहारक मिश्र का योगी जीवों के 28 प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। वहां तो एक समय में मरण हो सकता है आहारक का योग अवस्था में, इसलिए वहां वो एक समय घटित हुआ। आहारक मिश्र अवस्था में मरण नहीं होता। तथा कार्मण का योगी जीवों के 28 प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। ये कार्मण का योगी 28 प्रकृतियों वाले जो जीव है उनके गुणस्थान कौन कौन से हो गए? हाँ लक्ष्मी बेन, कार्मण का योग 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला जीव गुणस्थान कौन कौन से हो सकते हैं? हाँ, पहला, दूसरा, बहुत अच्छा, पहला, दूसरा और चौथा। 13 लेना है या 28 की सत्ता वाला लेना है? मोहिनी की सत्ता वाला लेना है
विशेषार।
का योग दूसरा अंतर्मूर्त के बिना नहीं करेगा। अंतर्मूर्त तो एक योग रहेगा, परंतु वहाँ आहारक अन्य योग से आहारक का योग में आया, जैसे मनोयोग में से आहारक का योग में आया और एक समय में मर गया।
मनोयोग से
वहाँ तीनों योग चलते हैं, मनोयोग, वचन योग और आहारक का योग। आहारक शरीर जब चल रहा है उसका, तब ये तीनों योगों का पलटना होता है अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त में। अब वो वचन योग में था और आहारक का योग में आया और एक समय में मर गया।
आहारक का योग में मरण होता है?
हाँ होता है।
अच्छा,
मिश्र में नहीं होता, आहारक का योग में हो सकता है। यानी आहारक शरीर के साथ अभी गए है और वहीं पर मरण हो जाए, ये बात बनती है। मर सकता है। विशेषार्थ, पांचों मनोयोग, पांचों वचन योग, औदारिक का योग, वैक्रिय का योग और आहारक का योग, इन सब का जघन्य काल एक समय, सब में ये घटित हो सकता है। उस योग में आया और मरण हुआ। और औदारिक का योग को छोड़कर शेष सभी का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। क्योंकि औदारिक काय योग में कितना हमने देखा था, एक इंद्रिय में 22,000 वर्ष हो जाता है ना उत्कृष्ट काल। तथा औदारिक काय योग का उत्कृष्ट काल कुछ कम 22,000 वर्ष है। कुछ कम किया, क्यों किया कुछ कम? औदारिक मिश्र का काल घटाना है, इसमें अंतर्मूर्त उतना घटाना पड़ेगा। उक्त योगों का जघन्य काल एक समय, वो एक समय कैसे घटित होता है? योग परावृत्ति यानी योग का परिवर्तन, गुण परावृत्ति, मरण और व्याघात की अपेक्षा बताया है। पर यहाँ योग परावृत्ति और गुण परावृत्ति की अपेक्षा एक समय संबंधी प्ररूपणा से प्रयोजन नहीं है, क्योंकि इनकी अपेक्षा योगों की एक समय संबंधी प्ररूपणा आश्रय भेद पर अवलंबित है। वास्तव में वहाँ प्रत्येक योग अंतर्मूर्त काल तक ही रहता है। यानी योग का परावर्तन जिसको कहते हैं, अन्य मार्गणाओं में ऐसा हो सकता है ना, जैसे किसी गुणस्थान में है और अन्य गुणस्थान में चला गया, अभी आठवें से नौवें में चला गया, तो आठवें में उसका अंतर्मूर्त काल बीत गया है और नौवें में आने के बाद एक समय में योग परिवर्तन हुआ, तो गुणस्थान बदल गया, उस अपेक्षा से भी वहाँ एक समय घटित होता है। वो हमें यहाँ नहीं लेना है, गुणस्थान बदली भी होगा तो प्रकृतियों की तो उतनी की उतनी सत्ता रहेगी, इसलिए उस दोनों को नहीं लेना है। अब रही मरण और व्याघात की बात। व्याघात होना यानी किसी अन्य योग में था, मनोयोग या वचन योग, और व्याघात होता है तो फिर कायोग में आ जाता है। व्याघात होना यानी उसके
कहते
एक्सीडेंट नहीं, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाना, व्याघ्रात होना चाहिए, उस योग से फिर काय योग में आ जाना। ये कषायों में भी होता है ना व्याघ्रात, कषायों में व्याघ्रात होने पर वो क्रोध में आ जाता है। वैसे बराबर व्याघात की बात सो यानी मरण और व्याघात में बता रहे, पांचों मनोयोग और पांचों वचन योग का जघन्य काल एक समय, मरण और व्याघात दोनों प्रकार से दो बराबर करना, दोनों प्रकार से बन जाता है वो दिख रहा है। पर अवतारिक कायोग और वैकृत कायोग का जघन्य काल वो तक समय न एक समय चाहिए, एक समय केवल मरण की अपेक्षा, जहां दो किया ना वो का दो, उसके नीचे जो तक शब्द है उसको एक करो। क्या कहते हैं औदारिक काय योग में हम एक एक की बात करेंगे। जघन्य काल एक समय बताया वो केवल मरण की अपेक्षा, व्याघात की अपेक्षा नहीं, क्योंकि अन्य योग से व्याघात होकर काय योग हो जाता है। काय योग का ही व्याघात कैसे होगा, काय योग ही रहता है ना, औदारिक कायोग का औदारिक कायोग होगा, वैकृत कायोग का वैकृत कायोग ही रहेगा। मनो और ये वचन योग में व्याघात होकर काय योग हो सकता है, परंतु इनमें व्याघात नहीं होता। इसलिए यहाँ एक समय जो घटित होता है वो उस योग में आया और मरण हुआ, तो मरण हुआ तो या तो कारमाण होगा या मिश्र होगा, जो कोई होगा। और आहार का योग का जघन्य काल मरण और अर्धाक्षय की अपेक्षा प्राप्त होता है। ये अर्धाक्षय क्या होता है, काल काल का क्षय हुआ है, आहार शरीर बनाने का कार्य पूरा हुआ, मूल शरीर में उसका योग पलट गया, क्योंकि वो आहार शरीर जब तक बना है तब तक उसको मनोवचन काय में औदारिक काय में वो टर्न होते रहता है, योगों का परिवर्तन होता है। अब काल पूरा हुआ उसका, एक समय में उसमें आया और काल पूर्ण हो गया, इसलिए योग पलट गया। औदारिक मिश्र का कपाट समुद्घात की अपेक्षा जघन्य काल एक समय है, पर उसकी यहाँ विवक्षा नहीं है। क्यों, यहाँ 28 की बात चल रही थी, मुनि की सत्ता वाले की बात चल रही थी, क्योंकि केवली जिन के मोह की 28 प्रकृतियों का सत्व नहीं पाया जाता, अतः यह औदारिक मिश्र का जघन्य काल खुदाभव ग्रहण प्रमाण और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त जान लेना चाहिए। क्योंकि औदारिक मिश्र जो है वो तो एक क्षुद्र भव ग्रहण, उसमें से हम कारमाण के तीन समय घटा सकते। वैकृत मिश्र का योग और आहारिक मिश्र का योग का जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकार का काल अंतर्मूर्त है। ये तो समझ में आ गया, ऐसे उसका काल ही अंतर्मूर्त है और वहां कोई मरण वगैरह की बात होती नहीं है, ना ही योग का परिवर्तन होता है। तथा कारमण का योग का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है। यहाँ पर भी वो पहला दूसरा और चौथा गुण स्थान की अपेक्षा लेना है, क्योंकि 28 की सत्ता वाला लेना। इस प्रकार योगों के इन कालों की अपेक्षा मोह की सभी प्रकृतियों का काल यहाँ कहा है, 28 की बात चल रही थी। इतनी विशेषता है कि औदारिक मिश्र का योग और वैकृत मिश्र का योग वाले जीव के, अभी जहाँ ये मिश्र का योग वालों में अन्य सभी प्रकृतियों की बात हम करते हैं, तब वो तो 28 की सत्ता वाला वो तो पूरा अंतर्मूर्त लेते हैं। अब कहते हैं सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय भी बन जाता है, क्योंकि अन्य भव में उन्होंने उद्वेलना करते करते आया है, औदारिक मिश्र अवस्था शुरू हुई और एक समय में उद्वेलना पूर्ण हो गई, तो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का एक समय घटित हो सकता है। सामान्य काय योग में 26 प्रकृतियों की जो एक समय संबंधी प्ररूपणा की है, वह उन प्रकृतियों के क्षय होने के अंतिम समय में काय योग के प्राप्त होने की अपेक्षा की है। यद्यपि उस जीव के काल योग अंतर्मूर्त काल तक रहता है, पर जहाँ जहाँ इन 26 प्रकृतियों का क्षय होता है, ये 26 प्रकृतियों का एक साथ नहीं समझना है। हर एक का अपना अपना जहाँ क्षय होता है वहाँ की बात है। 26 प्रकृतियों में ये दो प्रकृतियों की छोड़कर बात है ना, जैसे मिथ्यात्व की बात आई, अनंतानुबंधी की बात आई, जो जो कषाय होगी उसकी बात आई। तो जहाँ उनका क्षय होता है उनके अंतिम समय में ये योग और इन प्रकृति ऐसा लेना, जैसे मिथ्या तो प्रकृति और मनोयोग लो या वचन योग लो या अन्य काय योग लो, तो उसमें रहते हुए मिथ्या वो क्षय होने का एक समय बाकी था और उस योग में आ गया, तो उस योग में रहते हुए मिथ्यात्व का एक समय घटित होता है क्योंकि दूसरे समय में उसका क्षय हो गया। कहाँ पर औदारिक मिश्र में और वैदिक मिश्र में हो सकता है। वो अकेले सम्यक प्रकृति हो सके, परंतु यहाँ 28 की रहते हुए उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ 28 पर घटित कर रहे हैं ना, जब हम 24 की सत्ता वाला लेंगे, फिर 24 में से कम हुआ मिथ्या तो कम हुआ, 23 की सत्ता वालों में उसका एक समय घटित करना है, 22 की सत्ता वाले में से घटित करना है, तब उसको घटित करेंगे। यहाँ जो 26 प्रकृतियों के क्षय की बात है वो अलग अलग अपने अपने पोजीशन पर लेना उसको, एक साथ इन 26 का तो कोई नाश नहीं होगा, क्या है ना। तो उस योग में आया और उसके क्षय का अंतिम समय था, तो उस योग के साथ एक समय घटित होगा। देखो वहां वहां क्षय होने के अंतिम समय में मनोयोग या वचन योग से काय योग के प्राप्त होने पर काय योग के सद्भाव में उन प्रकृतियों का सत्व एक समय तक ही दिखाई देता है, इसलिए सामान्य काय योग में एक समय संबंधी प्ररूपणा बन जाती है। सामान्य कायोग में ही लिया उन्होंने और अन्य कायोग में वहां नहीं लिया, यही अपेक्षा। मरण की अपेक्षा उन्होंने घटित किया था वहां, यहां तो क्षय की अपेक्षा भी उन्होंने घटित किया। अब आगे की मार्गणा, वेद मार्गणा, वेद मार्गणा के अनुवाद से स्त्री वेदियों में अनंतानुबंधी चतुष्क का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल सौ पल्य पृथक्त्व है। ये सौ पल्य पृथक्त्व क्यों लिया? ये स्त्री वेद का उत्कृष्ट काल, इसलिए वहां उतना ले लिया। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 55 पल्य है। यह अनंतानुबंध 55 पल्य एक भव की बात है और ये पृथक्त्व 100 पल्य पृथक्त्व है, यानी वहां तिर्यंचिनी मनुष्यनी और देविया स्त्री वेद कायम रहते हुए उसका काल हो गया। ये अनंतानुबंधी का जगन्य काल एक समय कैसे होगा बोलो? तो एक समय कैसा हुआ? वी संयोजना कर दी है तो अनंतानुबंधी नहीं थी, और फिर वी संयोजना के बाद मिथ्यात्व में आ जाएगा। मिथ्यात्व आने के बाद एक समय में रहा वहां और फिर वेद अन्य मरकर अन्य वेद में चला गया, ऐसा भी ऐसा ले सकते चतुष्क का एक समय लेना है। चतुष्क का एक समय कब होगा? पहले नहीं था, यानी पहले विषय योजना वाला जीव था, विषय योजना के बाद किसकी स्थिति लग गई? वो एक समय में मर गया, एक समय में मर गया, ऐसा लेना। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 55 पल्ले है। ये साधिक 55 पल्ले क्यों लिया? उत्कृष्ट काल साधिक 55 पल्ले। ऐसा गोलमोल उत्तर नहीं चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए। सम्यक जगन्य काल तो उद्वेलना करके आया है, हम देखते हैं उद्वेलना करके आता है तो उसकी सत्ता पूरी हुई। अब यहाँ साधिक 55 पल्ले में सत्ता पूरी हुई, ऐसा ले वो तो वेद पूरा हो जाएगा ना उसका, पुरुष वेद में जन्मा, ऐसा ले सकते। तथा शेष 22 प्रकृतियों का जघन्य काल ये 26 में से 22 लिए, शेष 22 प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल 100 पल्ले पृथक्व है। पुरुष वेदियों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 132 सागर है। ये तो हमने दिखा था ना, वो पुरुष वेद चालू रहा और समय को उसका बना रहा। तथा शेष 26 प्रकृतियों का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल 100 पृथक सागर, 100 सागर पृथक है। इतनी विशेषता है कि इनके अनंतानुबंधी का जघन्य काल एक समय है। नपुसक वेदियों में सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर है। सौ सागर पृथक तो पुरुष वेदिक और 100 पल्ले पृथक तो स्त्री वेदिक। तथा शेष 26 प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट अनंत काल है, जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। ये नपुसक वेद में घटित कर रहे, तो एक इंद्रियों की बात है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। और साधिक 33 सागर कैसा लिया उन्होंने नपुसक वेद में? नरक में कैसे, किस तरह से अभी घटित करो इसको। हाँ तो कुछ कम होना चाहिए। हाँ बोलो देवेंद्र भाई, हेल्प करो।
हाँ
तो कितने, कौन सी प्रकृति की बात चल रही, कौन सी प्रकृति की बात चल रही? नहीं, हाँ देखो ऐसा लेना है, जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव, सादी मिथ्या दृष्टि जीव अब वो नरक में गया है, उद्वेलना भले चालू हुई ना, क्योंकि वो तो मिथ्या तो अवस्था में नरक में है, सातवें में गया है तो मिथ्या दृष्टि है, तो उसकी उद्वेलना हो रही है और वहां जाने के बाद उसने सम्यक तो प्राप्त कर लिया। तो सम्यक तो प्राप्त कर लिया तो उसका वो सम्यक तो बना रहे तैतीस सागर में कुछ कम तक, परंतु पहले से नपुसक वेद चालू था। हमें गति नहीं देखनी, हमें नपुसक वेद देखना है। तो नपुसक वेद वाला लेना है तो हम ले सकते ना, वो सम्मूर्छन महामत्स्य जो कोई था, वो तो उसने समय को प्राप्त किया था, उसकी सत्ता में ये दोनों आ गई थी, फिर मिथ्या तो में चला गया और फिर नरक का युवान था, नरक में चला गया, ऐसा जीव लेना है। तो उस नपुसक वेद के साथ उसकी सत्ता थी और वहां पे जाने के बाद फिर उद्वेलना के पहले पहले उसने समय प्राप्त कर लिया है, लास्ट में उसको मिथ्या तो में ही जाना है, मिथ्या तो में भी गया है फिर भी उसकी सत्ता तो है ना वहां पर। शुरू शुरू में मिथ्या तो में नहीं डालना, क्यों नहीं तो पल्ले के असंख्यात विभाग में तो उसकी उद्वेलना हो जाएगी।
तो
लास्ट तक उसको खींचना है उसका समय को, और फिर अंत में वो मिथ्या तो में गया आयु बांधी, फिर भी उसकी सत्ता तो बनी रही उसमें। नपुसक वेद
में जन्म ले लिया,
नपुसक वेद में उसकी 28 की सत्ता थी, ऐसा जीव लेना। और नपुसक वेद के साथ सातवें में गया है, यानी सातवें में तो नपुसक वेद ही होता है, 28 की सत्ता भी है, और थोड़े काल के बाद उद्वेलना पूरी होने के पहले पहले फिर सम्यक तो प्राप्त किया, सम्यक तो प्राप्त किया तो 28 की सत्ता उसकी चालू ही रही। अंत में जाके मिथ्या तो में गया तो भी 28 की सत्ता तो है ही उसकी, हमें उतना उसको देखना है, तो सम्य दृष्टि की मिथ्या दृष्टि उसको नहीं देखना है। नपुसक वेद के साथ इनकी सत्ता साधिक 33 सागर रहेगी, तो वहां से आने के बाद कितने काल तक टिकेगी उसकी सत्ता?
क्या
बनेगा?
हिंसा पशु,
मेरा प्रश्न आपको उसका उत्तर ही नहीं दे रहा। उसके बाद उसकी सत्ता कितने काल तक बनी रहेगी? तो ये प्रश्न का उत्तर ऐसा है कि पल्ले के असंख्यात विभाग तक रहेगा, तो उसमें तो उसके कितने ही भव हो जाएगी कि नहीं होगी जाएगी? एक भव भले उसका हिंस्र श्वापद है और सातवें नरक से आए हुए, वहां समय दृष्टि रहा हो, वहां से आए हुए जीव के उसके पश्चात वाले भव में समय तो नहीं हो सकता, परंतु उसके बाद वो भव पलट जाएगा उसका, वो एक भव से अन्य भव में चला जाएगा, तो वहां तो समय तो हो सकता है उसके दूसरे भव में, तो उसकी वो सत्ता बनी जा रही सकती है, यानी मिथ्या तो में ही रहा तो पल्ले के असंख्यात विभाग तक रहेगी, और समय तो प्राप्त किया तो बीच में फिर उसके फिर दोबारा कंटिन्यू।
सातवें नरक में सबसे ज्यादा सुखी आदमी यही है।
कौन सा?
अगर अपन समय दर्शन को सुख मानते हैं, मानते हैं
समय दर्शन नरक में रहते हुए भी उतनी निराकुलता है,
अपने आनंद का लेता है बोलते समय दर्शन से, तो इससे
फिर भी बाह्य में उसकी इतनी चल रही है, बाह्य में इतने उसके कृष्ण लेशा भी चल रही है, और वहाँ की जो कुछ होगा एक दूसरे से क्रोध करना वगैरह वो भी चल रहा है, फिर भी वहाँ निराकुलता की धारा उसकी चल
रही है।
अरे वो तो सर्वार सिद्धि से आया हुआ भी कृष्ण लेशा में जा सकता है ना, अंतर्मुख में मनुष्य होगा एक कृष्ण लेशा, वो तो कुछ इन्हें हम समझ रहे, वो तो ऐसा कोई परिणाम नहीं कि वो जाके दूसरे को मारता ही होगा। ये आए ना हम नीचे अपगत वेदियों की बात करेंगे, तथा अपगत वेदियों में 24 प्रकृतियों का काल कितना है? अपगत वेदियों में 28 नहीं लिया, क्या बात है? वो भी पढ़ा था, वो हमने ये भी बताया था कि ये तो एक इंद्रियों की अपेक्षा है, ये भी बात हुई थी अपनी। तो अपगत वेदियों में 24 प्रकृतियों का काल कितना है? तो जगन्य काल एक समय है, और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। ये कैसे होगा? एक समय अपगत वेदी, हाँ, 24 की सत्ता वाला, और वो मर गया उपशम श्रेणी वाला, तो आठवें में मरेगा कि नहीं मरेगा? पर आठवें में अपगत वेदी नहीं होता है ना, इसीलिए पूछा मैंने। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी अंतर्मूर्त काल तक वो अपगत वेदी और 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला है। इसी प्रकार अकषायी सूक्ष्म सांप्रायिक संयत और यथाख्यात संयत जीवों के 24 प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त कहना चाहिए। इसका भी विशेषार्थ, 24 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक स्त्री वेदी जीव 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला हुआ और दूसरे समय में मरकर अन्य वेद वाला हो गया, ये ऐसा लिया हुआ ऊपर जो बता रहे थे ना, अनंतानुबंधी चतुष्क का नहीं, 24 की सत्ता वाला लिया। उसके अनंतानुबंधी का जघन्य काल एक समय पाया जाता है। जो 20 प्रकृतियों की सत्ता वाला कोई एक स्त्री वेदी जीव 28 प्रकृतियों की सत्ता वाला हुआ, इसका अर्थ क्या है? इन्हें अनंतानुबंधी की संयोजना हुई है, विसंयोजना वाला था, ये संयोजना हुई और दूसरे समय में मरकर अन्य वेद वाला हो गया, यही बात हमने दी थी। तो उसके अनंतानुबंधी का जघन्य काल एक समय पाया जाता है। स्त्री वेद के साथ एक जीव निरंतर 100 पल्य पृथक्व काल तक रहता है। हमने देखा था ना तीनों गतियों में उसका स्त्री वेद कायम रहा तो 100 पल्य पृथक्व। अतः अनंतानुबंधी चतुष्क का उत्कृष्ट काल 100 पल्य पृथक्व कहा है। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय उद्वेलना की अपेक्षा कैसे घटित होता है, इसका उल्लेख पहले कराए। कोई एक सम्यक प्रकृति की और कोई एक सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाला मिथ्यादृष्टि स्त्री वेदी जीव 55 पल्ले की आयु लेकर स्त्री वेदी हुआ और वहां उक्त दोनों प्रकृतियों की उद्वेलना होने के अंतिम समय में वे वेदक सम्य दृष्टि हो गए और अंत समय तक सम्य दृष्टि बने रहे। अनंतर वहां से सम्य दर्शन के साथ मरकर पुरुष वेदी हुए। इस प्रकार उन स्त्री वेदी जीवों के उक्त दोनों प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल साधिक 55 पल्य प्रमाण प्राप्त होता है। यानी साधी मिथ्या दृष्टि 28 की सत्ता वाला वो स्त्री वेदी में उत्पन्न हुआ 55 पल्ले की आयु वाला, सत्ता यानी साधी मिथ्या दृष्टि था और वहां जाकर उसने देखो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का अलग अलग लेना है उसको, तो वहां फिर उसने वेदक सम्यक तो प्राप्त किया और फिर मरकर वो पुरुष वेदी हुआ, तो स्त्री वेद में रहने का काल उसका यहाँ 55 पल्ल और पहले भी उसको स्त्री वेद में घटाया है क्योंकि मिथ्या दृष्टि होकर फिर वो स्त्री में जन्मा था, इसलिए उसकी सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल साधिक 55 पल्ल घटित होता है। हाँ, एक 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 आयु, एक देवी की आयु 55 पल्ले वाली, क्योंकि बाद में वेद का पलटना हो गया ना, सम्यक दृष्टि है तो अब यहाँ पुरुष होकर जन्मा। साधिक 55 पर जो स्त्रीवेदी जीव उपशम श्रेणी पर चढ़कर अवेदी हुआ और लौटकर पुनः एक समय तक स्त्रीवेदी हुआ और दूसरे समय में मरकर पुरुषवेदी हो गया, उसके शेष 22 प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। 24 में से 22 लिए स्त्री वेदी के इन्हीं 22 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल जो सौ पल्ल्य पृथक कहा है वह स्त्री वेदी के साथ निरंतर रहने के काल की अपेक्षा से कहा है। पुरुष वेदियों के सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल एक समय उद्वेलना की अपेक्षा प्राप्त होता है। जो पुरुष वेदी जीव 66 सागर काल तक वेदक सम्यक्त्व के साथ रहा पुनः मिथ्यात्व में आकर द्वितीय बार क्रम से वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त कर उसके साथ 66 सागर काल तक रहा उसके सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल साधिक 132 सागर प्राप्त होता है। जिस प्रकार स्त्रीवेदी जीवों के अनंतानुबंधी का जघन्य काल एक समय घटित कर आए है उसी प्रकार पुरुषवेदी जीवों के जानना चाहिए। पुरुष वेद के साथ निरंतर रहने का काल 100 सागर पृथक है, अतः अनंतानुबंधी चतुष्क और शेष 22 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल 100 सागर पृथक्त्व कहा है। जो पुरुषवेदी उपशम श्रेणी से उतरकर तत्काल पुनः उपशम श्रेणी पर चढ़कर अपगत वेदी हो जाता है उसके पुरुष वेद का जघन्य काल अंतर्मूर्त प्राप्त होता है। इस अपेक्षा से पुरुष वेदी के शेष 22 प्रकृतियों का जघन्य काल अंतर्मूर्त का है। ये समझ में आया? स्त्री वेदी का एक समय घटित किया और पुरुष वेद को अंतर्मूर्त का, ऐसा क्यों? क्योंकि उपशम श्रेणी पर चढ़कर उतरा है, अपगत वेदी होकर स्त्री वेद में आया और एक समय में मरा तो पुरुष वेदी होकर जन्मेगा, परंतु अपगत वेदी होकर पुरुष वेद में आया और एक समय मरा तो भी पुरुष वेद में ही जन्मेगा, तो उसको फिर दोबारा वेद रहित करने के लिए वो फिर दोबारा उपशम श्रेणी चढ़ाया जाता है। तो एक अंतर्मूर्त तक पुरुष वेद में रहा फिर अपगत वेदी हुआ, इसलिए अंतर्मूर्त घटित होता है। स्त्री वेद में एक समय घटित होता है परंतु पुरुष वेद में अंतर्मूर्त जघन्य कैसे घटित होता है इस अपेक्षा से। स्त्री वेदी जीवों के समान नपुंसक वेदी जीवों के सभी प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय घटित कर लेना चाहिए, यानी वहां भी अपगत वेदी होकर नपुंसक वेद में आया है और फिर मर गया तो पुरुष वेदी होकर जन्मेगा, उसका वेद पलट जाएगा। जो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाला सातवें नरक में उत्पन्न होने से पूर्व नपुंसक, बाईस यानी वहाँ 24 की बात हमने देखी, यानी उपशम श्रेणी वाला जीव यहाँ लिया है, तो उसमें तो उन दो की बात छोड़कर सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की बात छोड़कर 24 की सत्ता वाले में उन दो की बात छोड़कर अन्य 22 की बात, सत्ता वाला लेना नहीं, वो तो क्षपक वाला नहीं लेना है उसका। तो ये जो हमने सातवें नरक की बात देखी थी, नपुंसक वेद के साथ अधिक से अधिक काल जो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का, तो जो सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की सत्ता वाला यानी सादी मिथ्या दृष्टि सातवें नरक में उत्पन्न होने से पूर्व नपुंसक वेदी रहा और वहां उत्पन्न होने पर आदि और अंत के दो अंतर्मूर्तों को छोड़कर सम्यक दृष्टि रहा। आदि के दो अंतर्मूर्त यानी पहले पर्याप्ति पूरी हुई और फिर एक अंतर्मूर्त में विशुद्ध हुआ, और अंत के दो अंतर्मूर्त क्योंकि वो मिथ्यात्व में गया अंतर्मूर्त के बाद आयु बांधी फिर अंतर्मूर्त रहा और फिर मरा, इसलिए लास्ट दो अंतर्मूर्त और पहले दो अंतर्मूर्त छोड़कर पूरे काल तक सम्यक दृष्टि रहा। उसके सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल साधिक 33 सागर प्राप्त होता है। तथा नपुंसक वेद के साथ निरंतर रहने का काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन है, अतः शेष 26 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्गल परिवर्तन कहा है, यानी वो एक इंद्रियों में नपुंसक वेद ही होता है, इसलिए असंख्यात पुद्गल परिवर्तन घटित होता है। अपगत वेद आदि शेष मार्गणाओं में 24 प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय मरण की अपेक्षा और उत्कृष्ट काल अंतर्मूल उस मार्गणा स्थान के उत्कृष्ट काल की अपेक्षा कहा है। ये अवगत वेद हुआ, अपगत वेद करना नीचे से तीसरे लाइन में। ये वेद मार्गणा पूर्ण हो गया।
बहु
बदले ना, तभी तो 66 सागर हो गए। फिर भी सम्यक भी था तो पुरुष वेद कायम रहा उसका। स्त्रियों में ऐसा नहीं घटित कर सकते, सम्यक तो बना रहे तो फिर उसका तो वेद बदल जाता है। ऐसा ले सकते कि उसके पहले पहले मिथ्यात्व में आया, फिर वो स्त्री में चला गया, इस तरह से उसका लंबा काल घटित कर सकते। परंतु वहां भी वो एक वो बड़ा बहुली है ना 55 का, और उसके पहले वाला स्त्री वेद का लिया। पुरुष वेद में लगातार भव होते हैं पुरुष वेद के साथ, इसलिए उसको तो अधिक बहुली है। 132 मिथ्यात्व में गया तो भी वो सत्ता तो उतनी रही कर्मों की। अब कषाय मार्गणा के अनुवाद से चारों कषाय वाले जीवों के मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी का काल मनोयोगियों के समान है। मनोयोगियों का जगन्य काल कितना था? एक समय। वैसे कषाय वालों का एक समय कैसे घटित होगा? कषाय बदल गया। क्रोध कषाय में आया, क्रोध कषाय मिथ्या तो प्रकृति है, क्रोध कषाय में आया और एक समय मर गया। और ऐसे गति में जन्मा कि वहाँ वो कषाय बदल जाती है ना, उस गति में वो अलग अलग कषाय होती है। कषाय का उसका काल एक समय में चेंज होकर अन्य कषाय हो गए, इस तरह से हो सकता।
क्रोध कषाय में मरा और देह में उत्पन्न हुआ अनु कषाय हो
गया। तथा शेष 21 प्रकृतियों का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। कषायों के परिवर्तन की अपेक्षा मिथ्यात्वादी 7 प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय बन जाता है, क्योंकि जिस समय इन 7 प्रकृतियों का अभाव होता है। अच्छा, ये तो क्षय की अपेक्षा लिया उन्होंने। उसके पहले समय में एक कषाय का काल पूरा होकर यदि अंतिम समय में दूसरी कषाय आ जाती है तो उस कषाय के सद्भाव में ये प्रकृतियां एक ही समय दिखाई देती है। या मिथ्यात्व को छोड़कर शेष 6 प्रकृतियों की पुनः उत्पत्ति संभव है, क्योंकि हमने देखा सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति उद्वेलना होने के बाद पुनः उनका उनकी उत्पत्ति होती है। अतः जिस समय ये 6 प्रकृतियां पुनः सत्व को प्राप्त होती है वह यदि किसी कषाय के उदय का अंतिम समय हो तो उस कषाय में वे 6 प्रकृतियां एक समय दिखाई देंगी। क्या कहना चाहते हैं? मिथ्यात्व का जो मिथ्यात्व में एक समय कैसे घटित करना है किसी एक कषाय में, तो मिथ्यात्व का क्षय होने का प्रोसेस चल रहा है ऐसा सोचना है। तो वो तो एक एक कषाय का काल एक एक अंतर्मूर्त होता है। तो मान लेते क्रोध में से मार में आया और उससे एक समय में वो मिथ्यात्व भी है और मान कषाय भी है, और दूसरे समय में मिथ्यात्व नष्ट हो गया तो मान में एक समय के लिए मिथ्यात्व ऐसे घटित हो सकता है। या अन्य 6 के बारे में क्या है कि अभी सम्यक प्रकृति है वो तो 7 ही है ना, तो वहां कैसे लेके वो कषाय के उदय का अंतिम समय था, वो उद्वेलना हुई थी उन प्रकृतियों की या विसंयोजना हुई थी अनंतानुबंधी की। अब वो कषाय अंतिम समय था, मान लेते 100 समय तक वो क्रोध रहने वाला, तो 99 समय बीत गए थे। और सवा समय है और उसकी संयोजना हुई या उसका फिर वो समय को प्राप्त किया उसने जो कुछ है, तो समय प्रकृति और समय मिथ्यात्व की सत्ता आ गई और फिर कषाय पलट गई। इस तरह से एक समय घटित हो सकता है। मिथ्यात्व में क्षय की अपेक्षा लेना और अन्य में पुनः उत्पन्न की होने की अपेक्षा लेना, मिथ्यात्व का क्षय करने वाला जीव लेना। तो मिथ्यात्व का क्षय का अंतिम समय यानी वो मिथ्यात्व के परमाणु सब समय मिथ्यात्व और समय प्रकृति होने वाले हैं, तो अंतिम समय में किसी वो कषाय का काल जो है वो एक समय बाकी, पहले तो अन्य कषाय में आ गया वो और एक समय में आते ही वो मिथ्यात्व है वहां पर, और बाद में कषाय भले चालू रहा परंतु मिथ्यात्व नहीं रहा, मान में आया और मिथ्यात्व का क्षय हो गया, और भले मान चालू रहा तो समय मिथ्यात्व का क्षय होने का प्रोसेस चला, परंतु मिथ्यात्व को तो उसके साथ एक समय चला। अकेले मिथ्यात्व नहीं, सातों के बारे में ये अप्लाई होता है। क्षय की जो एक समय की बात है वो सातों के बारे में, परंतु अन्य छह के बारे में वो उत्पन्न होने की अपेक्षा भी एक समय घटित होता है। समझ में? जैसे मिथ्यात्व के क्षय होने के समय वो कषाय बदल, एक समय तक रहकर कषाय बदल गई या मिथ्यात्व ही चला गया, कषाय भले चालू रही, ऐसे ही समय मिथ्यात्व का क्षय होने का अंतिम समय है, तो उसके पहले क्या हुआ, अन्य कषाय चालू हो गई लास्ट समय, ऐसे माया कषाय चालू हो गई और समय मिथ्यात्व तभी माया के साथ एक समय दिखा और आगे के समय में समय समय मिथ्यात्व का क्षय हो गया, तो एक समय के लिए वो उसके साथ था क्षय की अपेक्षा से। ये तो क्षय की अपेक्षा चारों सातों में घटित होता है, परंतु उत्पत्ति की पुनः उत्पत्ति की अपेक्षा मिथ्यात्व में तो ऐसा नहीं कि नष्ट हुआ था और फिर उत्पन्न हुआ, अन्य में ये फिर उत्पन्न होने की संभावना है, तो उसकी अपेक्षा से वहां भी एक समय घटित होता है, क्योंकि उस विशिष्ट कषाय में था तब वो समय प्रकृति या समय मिथ्यात्व तो वो प्रकृति तैयार हुई, क्योंकि वहां उसने औक्षण समय तो प्राप्त किया था और फिर क्या वो कषाय पलट गया, तो एक समय के लिए वहां घटित होता है। सातों के लिए क्षय की अपेक्षा एक समय और ये छह के लिए उत्पन्न होने की अपेक्षा भी एक समय।
उत्पन्न किसका?
समय प्रकृति की उत्पत्ति होना या अनंतानुबंधी की उत्पत्ति होना। सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति की उत्पत्ति कैसी होगी? सम्यक तो प्राप्त करेगा, तो वहां भी अन्य कषाय है ना उसके, भले अनंतानुबंधी नहीं है परंतु वो क्रोध मान माया लोक की बात यहाँ चल रही है, वो अप्रत्याख्यान वाला है कि किसका है उसकी बात हमें उसकी बात नहीं सोचते, या ये हो गई ना पुनः उदय छह प्रकृतियों का एक समय दिखाई देता है, यहां तक हमने पढ़ा तीन तीन छह सात लाइन हो। इस प्रकार इन सात प्रकृतियों का चारों कषायों में जघन्य काल एक समय बन जाता है, पर इस प्रकार शेष 21 प्रकृतियों का क्षय क्षपक श्रेणी में होता है और क्षपक श्रेणी पर जीव जिस कषाय के उदय के साथ चढ़ता है अंत तक उसी कषाय का उदय बना रहता है, इसलिए चारों कषायों में शेष 21 प्रकृतियों का काल अंतर्मूर्त है। क्या कहना चाहते हैं? यह अनंतानुबंधी में तो ये पलटना हुआ, जब उसका क्षय होता है तो इन कषायों का तो पलटना होता है, परंतु क्षपक श्रेणी में जहां इन कषायों का जो क्षय होता है तो वह विशिष्ट जिस कषाय के साथ श्रेणी चढ़ता है वही कषाय चालू रहता है, इसलिए वहां अंतर्मूर्त काल घटित होता तथा सभी प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रत्येक कषाय के काल की अपेक्षा जानना चाहिए, क्योंकि सामान्य रूप से किसी भी कषाय का जघन्य और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त से कम नहीं है। सामान्य बात की उन्होंने, उसका अंतर्मूर्त काल घटित होता है। मार्गणा। ज्ञान मार्गणा के अनुवाद से मत्य ज्ञानी यानी मति अज्ञानी और श्रुता ज्ञानी जीवों के मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषाय के 3 भंग होते हैं। कौन से 3 हैं? मति अज्ञानी या तो अनादि अनंत हो गए या अनादि शांत हो गए या सादी शांत हो गए। उनमें से जो सादी शांत भंग है उसकी अपेक्षा जघन्य काल अंतर्मूर्त है। और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। सादी शांत में अर्धपुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि सादी शांत हमने अपेक्षा ली ना शांत वाली तथा सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल पल्योपम का असंख्यात वा भाग है। अंतर्मूर्त क्यों लिया? एक समय क्यों नहीं लिया? हाँ बोलो, कौन उत्तर देना चाहता है?
तो ये मध्य ज्ञान जो है, नहीं ये
क्यों नहीं घटित होता है? एक समय उसकी बात है, उसका मति अज्ञान चालू हो गया तो सम्यक वसे गिरा तो एक समय में उद्वेलना पूरी होगी। समय में देखो सम्यक में से मिथ्यात्व में आने पर अंतर्मूर्त के बाद तो उद्वेलना तो चालू हो जाती है, एक अंतर्मूर्त में शुरू हो जाती है। परंतु ऐसा जीव लेना है कि उद्वेलना के अंतिम समय में आता है और मार्गणा चेंज होती है, ये एक इंद्रियों में आता है पंचेंद्रियों में से, परंतु उसने पंचेंद्रियों में मिथ्यात्व के साथ काल बिताया ना, और जब एक इंद्रिय में आता है तो उसका मिथ्यात्व तो चालू था पहले से और उसके उद्वेलना का अंतिम समय में उन मार्गणाओं में घटित होता है। परंतु यहाँ मति अज्ञानी मार्गणा है अपनी, अपनी मार्गणा कौन सी है? मति अज्ञान, मिथ्यात्व उसका चल रहा है तो मिथ्यात्व के साथ यानी मति अज्ञान जो है तो उसके साथ उसका काल, क्योंकि मिथ्यात्व में ही रहने का काल अंतर्मूर्त है। अब यहाँ उद्वेलना की बात मत सोचो, सम्यक दृष्टि था और मिथ्यात्व में आया है तो मिथ्यात्व के साथ उसके मिथ्या यानी वो मति अज्ञान शुद्ध अज्ञान के साथ उसके सम्यक प्रकृति भी और सम्यक मिथ्यात्व भी है तो कम से कम कितने काल तक रहेगा? अंतर्मूर्त में सम्यक तो प्राप्त किया तो मति अज्ञानी से सुमति ज्ञानी हो गया तो उसकी मार्गणा ही पलट गई अंतर्मूर्त, तो इनका सत्ता ये अंतर्मूर्त वाली हो जाएगी, एक समय वाली यहाँ घटित नहीं हो सकती। और उत्कृष्ट काल कितना बताया? कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन, क्योंकि मति अज्ञानी का जो है ना, मति अज्ञानी का उत्कृष्ट काल बताया, उनमें मिथ्यात्व 16 कषाय और 9 कषाय की बात की, यहाँ पर सम्यक प्रकृति वगैरह की बात नहीं ली है तथा सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल पल्यकों का असंख्यात भाग है। भले वो मति अज्ञान चालू रहे उसका परंतु पल्य के असंख्यात भाग में उद्वेलना पूर्ण हो जाती है, इसलिए जघन्य काल भी अंतर्मूर्त ही हो सकता है, इस समय नहीं हो सकता। इसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के सभी प्रकृतियों का काल कहना चाहिए। विभंग ज्ञानियों में ज्ञान मार्गणा है ना, इसलिए मति अज्ञान श्रुत अज्ञान हो गया, अभी विभंग ज्ञान, उनमें सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का काल मति अज्ञानियों के समान है। इतनी विशेषता है, इनके उक्त दोनों प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय है। अभी विभंग ज्ञान है वो तो हमेशा वाला नहीं है, तो ऐसा अभी इसमें कैसे घटित होगा एक समय? एक समय अच्छा एक समय में मरवाना चाहते हैं अच्छा नहीं नहीं परंतु विभंग ज्ञानी में समय प्रकृति समय मिथ्यात्व का काल ऐसा हो सकेगा ना वो तो अज्ञानी है उद्वेलना मिथ्या दृष्टि है उद्वेलना करते 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 उसको विभंग ज्ञान प्राप्त हुआ और एक समय में उद्वेलना समाप्त हो गई ऐसा ले सकते उसमें तथा शेष 26 प्रकृतियों का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है अब ये विशेषार्थ में बताएंगे अभव्य मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी चाहिए अभव्य मत्य ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी के सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व को छोड़कर शेष 26 प्रकृतियों का काल अनादि अनंत है उनको क्यों छोड़ा अभव्य है ना उनके तो इनकी सत्ता का सवाल ही नहीं जिस भव्य ने एक बार समय को प्राप्त कर लिया है उसके उक्त 26 प्रकृतियों का काल अनादि अनंत है 26 की बात चल रही है तथा इस जीव के मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाने पर इन 26 प्रकृतियों का काल सादी शांत हो जाता है उनमें से यहाँ सादी शांत की अपेक्षा काल कहा जा रहा है यह जीव मिथ्यात्व में जाने पर जैसे मिथ्यात्व तो प्रकृति का काल सादी शांत होगा कि नहीं होगा जैसे उसका मिथ्यात्व अभी कायम रहने वाला नहीं मिथ्यात्व का अंत होने वाला सभी प्रकृतियों में समझना है हाँ अभी उनमें से जो है भव्य जो सादी शांत वाला है मिथ्या दृष्टि उसकी अपेक्षा यहाँ काल गिना रहे उनमें से यहाँ सादी शांत की अपेक्षा काल कहा जा रहा है जो समय दृष्टि जीव अंतर्मृत काल तक मिथ्यात्व में रहकर पुनः सम्यक्त को प्राप्त हो जाता है उसके उक्त 26 प्रकृतियों का तथा सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का जगन्य काल अंतर्मूर्त होता है क्योंकि मति अज्ञान के साथ रहने का और उन प्रकृतियों का काल ऐसा लेना उसको तो अंतर्मूर्त होता है जगन्य तथा जो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल शेष रहने पर उसके प्रारंभ में सम्यक्त को प्राप्त करता है और 6 आवली शेष रहने पर सासादन में और वहां से मिथ्यात्व में जाकर परिभ्रमण करता है पुनः अंतिम भव में अंतर्मूर्त काल शेष रहने पर सम्यक्त प्राप्त कर मोक्ष जाता है क्या कहते हैं कुछ कम अर्धपुद्गल परिवर्तन तो अर्धपुद्गल परिवर्तन में थोड़ा ही मिनिमम कम करना है मैक्सिमम रखना है तो उसके लिए क्या किया अर्धपुद्गल परिवर्तन काल से शुरू किया मोक्ष प्राप्त होने के लिए अर्धपुद्गल परिवर्तन काल ही बाकी रहा था और उसी समय में उसको सम्यक्त प्राप्त हुआ अभी उसको मिथ्यात्व में अधिक से अधिक काल बिताना है तो क्या करना अंतिम जो एक मिनिमम अंतर्मूर्त जितना आवश्यक है उतना छोड़ा कि सम्यक्त भी प्राप्त करेगा और फिर मुनि अवसर मोक्ष सब कुछ उसमें हो जाएगा और पहले में भी कम करना है तो पहले तो सम्यक्त तो प्राप्त हुआ है तो अर्लीएस्ट मिथ्यात्व में पहुंच जाएगा हाँ तो पहले में पहले औपशमिक समय दृष्टि हुआ औपशमिक समय दृष्टि होकर 6 आवली काल बाकी रहा तभी वो सासादन में चला गया और सासादन में से वो सासादन में तो चला गया तो सासादन में जाने पर मति अज्ञान चालू हो गया तो औपशमिक समय का काल घटाया और मति अज्ञान का बढ़ाया वो 6 अवली मिल गए ना उसको उतना तो बाद में मिथ्या तो नहीं चला गया ऐसा जीव लिया है और अंतिम भव में वो हमने देखा था तो ऐसे जीव के उक्त 26 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्ध पुद्गल परिवर्तन प्रमाण होता है किंतु सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल पल्लोपम की असंख्या का भाग ही होता है इससे अधिक नहीं क्योंकि उसमें तो उद्वेलना पूरी होती है भले बीच में सभी पूरा काल मिथ्यात्व में रहे, वो तो रहेगा अर्ध पुद्गल परा समय प्रकृति और समय मिथ्यात्व तो कितने काल तक रहेगी उसके साथ बल्ले के असंख्यात रहेगा, इससे अधिक नहीं, क्योंकि पल्लवपम के असंख्यात भाग काल के द्वारा उद्वेलना होकर इनका अभाव हो जाता है। पुनः सम्यक्त्व के बिना इनका सत्व नहीं होता, पुनः सम्यक्त्व होगा तो कौन सा होगा? प्रथमोपशम सम्यक्त्व होगा, उद्वेलना पूरी हुई है, अब कौन सा सम्यक्त्व उसके है? ये वेदक तो हो नहीं सकता, तो उसके प्रथमोपशम सम्यक्त्व की फिर से प्राप्ति होगी। सम्यक प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना के अंतिम समय में विभंग ज्ञान के प्राप्त होने पर, हमने ऐसे डिराइव किया था ना, विभंग ज्ञानियों के उक्त दोनों प्रकृतियों का जघन्य काल एक समय होता है, तथा जो सम्यक दृष्टि सासादन गुणस्थान को प्राप्त होकर एक समय विभंग ज्ञान के साथ रहता है और द्वितीय समय में मरकर अन्य गति को चला जाता है, ये सासादन की अपेक्षा से भी वहां विभंग ज्ञान, यानी सम्यक दृष्टि था, अभी हम कोई देव लेते सम्यक दृष्टि और सासादन में जाते ही क्या होगा, वो विभंग ज्ञानी हो जाएगा और एक समय में मरकर अन्य गति में चला गया, द्वितीय समय में मरकर अन्य गति को चला जाता है, उसके सभी प्रकृतियों का विभंग ज्ञान की अपेक्षा जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है। विभंग ज्ञान का उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है। ये कुछ कम क्यों कहा? क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है, ये भव प्रत्यय होता है तो भी, तो वहां पर्याप्ति पूरी होने पर ही वो विभंग ज्ञान प्राप्त होता है। तो जो सम्यक सु अवधि ज्ञान है तो वह अपर्याप्त अवस्था में प्राप्त होता है कि नहीं होता? हाँ अवधि ज्ञान, सु अवधि ज्ञान, तो सभी सम्यक दृष्टि देवों के सु अवधि ज्ञान होगा ना अपर्याप्त अवस्था में, क्यों नहीं होगा? देवों में तो सबको होता है। हाँ आप क्या कहते हैं? विभंग की बात ही कर, देखो देखो क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, जो यहाँ का अवधिज्ञानी जीव है उसका अवधिज्ञान देव के अपर्याप्त अवस्था में है, परंतु वो ऑर्डिनरी समय दृष्टि विदाउट अवधि ज्ञान, उसके भी अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान नहीं पाया जाएगा, वो पर्याप्त होने पर ही उसको अवधि ज्ञान होगा। वहां समय दृष्टि उनके सभी को अवधि ज्ञान तो होता है, मिथ्या दृष्टि को विभंग ज्ञान और समय दृष्टि को अवधि ज्ञान, परंतु जो पूर्व भाव से अवधि ज्ञान के साथ गया है उसके ही अपर्याप्त अवस्था में अवधि ज्ञान पाया जाएगा। जो समय दृष्टि तो है परंतु अवधि ज्ञानी नहीं है, ऐसा जो मरकर देव में जाता है तो उसके भी पर्याप्त होने पर अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है अपर्याप्त अवस्था में।
जो नारकी है समय दृष्टि है,
नारकी समय दृष्टि
अवधि ज्ञान है वहाँ पर।
हाँ बिल्कुल है,
और वो यहाँ पर मनुष्य जन्म कहता है।
हाँ
समय दृष्टि है,
उसका तो क्षायिक समय दृष्टि है तो उसका अवधि ज्ञान चालू रह सकता है, परंतु रहेगा ही ऐसा नहीं कह सकते,
नहीं रह सकता है।
अभी वहाँ नीचे के नरकों में है नारकी, वो तो क्षायिक है ही नहीं है, और वहाँ तो अवधि ज्ञान तो सबके होता है, और वहाँ से मरकर यहाँ आया, समय दर्शन तो चालू रहा, परंतु अवधि ज्ञान होने की उसकी गारंटी नहीं है, वहाँ उसका अवधि ज्ञान नहीं रहेगा, उसको
गारंटी
नहीं है उसकी,
रह सकता है,
ये भी सकता है, वो भी सकता है,
का भी छठे नरक का रहे।
हाँ अवधि ज्ञान तो रहता है, क्योंकि वहाँ तो आए हुए वो तो विशिष्ट उनकी वो लब्धि भी होती ना वैसे, तो ऐसे कोई हम नियम नहीं कह सकते उसके रहेगा ही, पर अभी हम जो तीर्थंकर की बात करते तो मतिश्रुत अवधि के ही साथ उत्पन्न, यानी जाता ही ऐसा भी नहीं और रहता ही ऐसा भी हम रूप तो नहीं कहीं लगा सकते।
मनुष्य और तिरेज जो समय दृष्टि और अभिज्ञानी है उनकी जाएगा
वो तो उसका लेके जाएगा
वहाँ रहना ही
है वहाँ तो उसका रहेगा पर्याप्त उसका
दिवस नहीं है मतलब देव से
हाँ देव से और नारकी क्योंकि वहाँ बहु प्रत्यय था और यहाँ जो होता है वो गुण प्रत्यय कहा जाता है और ये तीर्थंकरों का अधिकार है उसके तो बहु प्रत्यय कहने में आता है क्योंकि उनके तो जन्म से है क्यों उनके जो अवधि ज्ञान का जो क्षोक्षम है तो पूरे सर्व प्रदेशों में पाया जाता है और जो गुण प्रत्यय होते हैं वो तो नाभि के ऊपर विशिष्ट चिन्हों में पाया जाता है इसमें विभंग ज्ञान का काल कुछ कम 33 सागर है इसलिए 26 प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर कहा और उत्कृष्ट उद्वेलना काल की अपेक्षा शेष दो प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल मत्य ज्ञानियों के समान पल्लवों का असंख्यात भाग कहा पढ़ना है क्या एक होगा पैगा मति ज्ञानी श्रुति ज्ञानी अभी ये सम्यक ज्ञान की बात चल रही है तथा अवधि ज्ञानी जीवों के अनंतानुबंधी चार का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल कुछ कम 66 सागर है तथा शेष प्रकृतियों का काल भी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि शेष प्रकृतियों का उत्कृष्ट काल साधिक 66 सागर है इसी प्रकार अवधि दर्शनी और सम्यक दृष्टि के सभी प्रकृतियों का काल कहना चाहिए इसका विशेषांक हम कल देखेंगे। ज्ञान ते सूजे लो कालो सोवाणी सदा
नमो लिंतान नमो स्थान नमो आयण नमो ज्ञान नमो देश नमो लिंतान नमो स्थान नमो आयण।